कृष्ण, आप सबका इस्कॉन के श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में स्वागत है। हम सब यहाँ पर भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो भी लोग इकट्ठे हुए हैं, एक उद्देश्य लेकर आए हैं कि हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है। तो ऐसा क्यों है कि केवल आप सभी यहां पर एकत्र हुए हैं, अन्य लोग क्यों नहीं आए? शायद आपने उनको बुलाया होगा, आपके पड़ोसी, आपके कुटुंब के कोई सदस्य होंगे, आपके मित्र होंगे, शायद आपने कई लोगों को बुलाया होगा मंदिर, आइए सत्संग में आइए, भाग लीजिए, वहां प्रवचन होता है, कीर्तन होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सभी लोग आपके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं, सही है? ऐसा क्यों है? कई लोग स्वीकार करते हैं और कई लोग नहीं करते, इसका क्या कारण है? लोगों की मनोवृत्ति अलग अलग रहती है, तो उसकी मनोवृत्ति अलग क्यों रहती है? किसी व्यक्ति के मनोवृत्ति ऐसे क्यों है कि उसको भक्ति की ओर झुकाव है और किसी को भक्ति की ओर झुकाव नहीं है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस जन्म में कोई भी भक्ति में नहीं आ सकता जब तक कि उसका संबंध भक्ति में पूर्व जन्म में न हुआ हो। अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ी बहुत भक्ति की है पिछले जन्म में, तभी वो इस जन्म में भक्ति में आ सकता है, अन्यथा नहीं। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग से थोड़ा संबंध स्थापित कर लिया है, केवल वही व्यक्ति इस जन्म में भक्ति मार्ग में आ सकता है। ये बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब ये है कि यहां सब जो भी मंदिर में बैठे हैं, सभी ने कोई ना कोई भक्ति की होगी पिछले जन्म में, किसी का किसी की भी तरह से संबंध क्यों ना आया हो। कई लोग आते हैं जो हो सकता है व्यवसाय की दृष्टि से यहां आते हैं, कोई फूल बेचने आता है, हर रोज सुबह एक फूल वाला आता है, वो फूल देता है मंदिर में, हम मंदिर को सजाते हैं, भगवान के अर्च विग्रह को सजाते हैं, तो वही फूल वाला यहां क्यों आता है, दूसरा फूल वाला क्यों नहीं आया? उसने भी कोई भक्ति की है कि उसको इस मंदिर से कुछ संबंध स्थापित करने का अवसर मिला है इस जन्म में। और उन लोगों की बात तो क्या, जो कि भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से यहां आते हैं केवल भक्ति करने के लिए। इसका मतलब है कि आप सब पिछले जन्म में कोई योगी होंगे, कोई भक्त होंगे, कोई क्या होंगे, पता नहीं, कहना मुश्किल है, अन्यथा आप यहां नहीं आते मंदिर में। शायद आप सिनेमा थिएटर में होते या घर में टेलीविजन देख रहे होते या कुछ और कार्य कर रहे होते। भक्ति ये एक बीज से उत्पन्न होता है, जैसे एक पौधा होता है या वृक्ष होता है, बीज से उत्पन्न होता है। तो ये भक्ति लता बीज, ये भी हमारे हृदय में जब इसको कोई बो देता है, तब धीरे धीरे से वो उगने लगता है। कई जन्म लग जाते हैं इसको, और कई जन्मों के बाद फिर इस बीज को पानी दे देकर, उसका संरक्षण करते करते, फिर वो पौधा बन जाता है, पौधा बनकर फिर वृक्ष बन जाता है, फिर वृक्ष बन के उसके फल होते हैं, फल पहले कच्चे होते हैं, बाद में पक्के हो जाते हैं, और वे पक्के फल जो हैं बहुत मीठे होते हैं। और ये मीठा फल क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, जो कि हमारे जीवन का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य है। लेकिन इन सारे चीजों को संपन्न करने के लिए काफी समय चले जाता है, कई जन्म बीत जाते हैं। धीरे 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 से सुकृति एकत्र करते 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 कहीं न कहीं बीज आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड का भ्रमण करने के पश्चात किसी एक भाग्यवान जीव को, जिसने कि कई योनियों में भ्रमण कर लिया है, कई ग्रहों में लोकों में सफर कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल जाता है भक्ति का बीज स्वीकार करने के लिए। ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यवान होता है। और ये भाग्य उसे कहां से मिलता है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति लता बीज किसी व्यक्ति के हृदय में आ जाता है। वृक्षारोपण। और इस प्रकार से भक्त को चाहिए कि वो एक माली बने। माली जानते हैं ना, जो पेड़ पौधे बगीचों का देखभाल करता है। इस विषय के बारे में कहीं कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे से भक्ति लता बीज का विकास होने लगता है। फिर व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ती है। एक जन्म में हो सकता है थोड़ी सी श्रद्धा बढ़े, वो पक्का भक्त नहीं बने। केवल थोड़ा बहुत आकर्षण हो, थोड़ा बहुत झुकाव हो, लेकिन तीव्रता से गंभीरता से हो सकता है वो व्यक्ति भक्ति न कर रहा हो, लेकिन शुभ चिंतक है। जैसे हम देखते हैं कि कई लोग हैं, आपके पहचान में भी ऐसे कई लोग होंगे जो कि अनुकूल भावना रखते हैं मंदिर के प्रति, भक्ति के प्रति। आप जाएंगे तो कहेंगे हाँ अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन खुद नहीं करते हैं। लेकिन आप जो कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, अनुकूल दृष्टि रखते हैं, तो शायद उनकी सुकृति या उनका भक्ति लता बीज अभी तक इसका विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे से, क्योंकि उन्होंने भक्ति लता बीज का विकास करना आरंभ किया है, भक्तों की प्रशंसा करके, भक्ति के प्रति अनुकूल भावना रख के, इसलिए अगले जन्म में हो सकता है कि वो और आगे प्रगति करेंगे। ऐसे जितनी ज्यादा वो भक्ति करते हैं, जितनी ज्यादा भगवान की सेवा करते हैं, जानते हुए या नहीं जानते हुए, वो जो भक्ति या सेवा की पूंजी है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे आपके बैंक के अकाउंट में अगर पैसा हो और आप रोजाना या हर महीने पैसे डालते रहते हैं लेकिन निकालते नहीं हैं, तो फिर क्या होता है? वो बैंक अकाउंट का है जो 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 कीमत वहां पे है, जो रकम है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ठीक उसी तरह से हमारे भक्ति के बैंक अकाउंट में हम जन्म जन्मांतर से हम भर्ती करते आए हैं, थोड़ा कुछ करते आए हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि अनजाने में भी अगर हमने कोई ऐसा कार्य किया, जैसे कि मान लीजिए हमने भगवान का नाम सुना लेकिन हम जानते नहीं हैं कि यह भक्ति है, या हमने अनजाने में किसी से प्रसाद पाया, शायद हम जानते हों कि यह प्रसाद है या नहीं जानते हों, या जानते भी हों लेकिन प्रसाद का महत्व नहीं पता हमें, और केवल अच्छा लगता है, मिठाई है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, इसलिए हम ले लेते हैं, तो ऐसे सारे कार्यों को अज्ञात सुकृति कहते हैं। सुकृति मतलब भक्ति मार्ग में पुण्य, और ये अज्ञात अवस्था में हम लेते हैं, हमें पता नहीं है कि इसका मूल्य क्या है, महत्व क्या है। तो ऐसे अज्ञात सुकृति की पूंजी जब हृदय में बढ़ती रहती है तो शायद इस जीवन के अंत तक वो पूंजी पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ी है, है पूंजी, फिर यही पूंजी जो है ये अगले जन्म में हमारे साथ में रहेगी, नष्ट नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नेहा भिकर्मनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस भक्ति मार्ग में आता है, इस भागवत धर्म के पथ को स्वीकार करता है, उसे जानना चाहिए कि उसे उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। सबसे जो बड़ा भय है उसके लिए, उससे वो मुक्त हो जाता है। सबसे बड़ा भय क्या है कि अगले जन्म में हमें कोई पशु योनि मिल जाए, कोई कीड़े पक्षी की योनि मिल जाए, हम भगवान को भूल जाएं। ये बड़े भय की बात होती है बुद्धिमान जीव के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई डर नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कि मेरी थोड़ी बहुत भी सेवा क्यों ना की हो, जाने में अनजाने में। और इस तरह से ये सुकृति की पूंजी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और जब पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है फिर वो तीव्रता से भक्ति करने लगता है। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते मोहद्वंद्व निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति के पाप खत्म नहीं हो जाते, ये शाम तु अंतगतम पापम और जनानाम पुण्य कर्मणाम, उसके पुण्य कर्म अर्थात सुकृति की पूंजी पर्याप्त मात्रा में बढ़ नहीं जाती, तब तक न भजन्ते माम दृढ़ व्रताः, वो बड़े दृढ़ व्रत से भगवान का भजन नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पाप नष्ट नहीं हुए तो हम भक्ति नहीं कर सकते, नहीं। अरे भक्ति नहीं करेंगे तो पाप कैसे नष्ट होंगे? भक्ति करके ही तो पाप नष्ट होंगे। लेकिन इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे भक्ति नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? जब तक भक्ति नहीं होगी पाप नहीं नष्ट होंगे, और जब तक पाप नहीं नष्ट होगा भक्ति नहीं होगी। तो ये लगता है ये बड़ा विरोधाभास है, ये कैसी बात कह दी भगवान ने? नहीं, विरोधाभास नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होते, सुकृति की पूंजी पर्याप्त मात्रा से बढ़ नहीं जाती, तब तक हम दृढ़ता से भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति कर सकते हैं लेकिन पक्की भक्ति नहीं कर सकते। जैसे हम में से कई यह मंदिर में आते हैं, लेकिन शायद सभी भक्त यहां आज जो आए हैं वो पक्के नहीं है भक्ति में। कभी कभी आते हैं, कभी मन हुआ तो आते, कभी मन हुआ तो नहीं आते। एक आध बार आ गए महीने में एक बार, फिर नहीं आए। अच्छा लगता है भक्ति मार्ग, लेकिन अभी तक पक्के नहीं हुए। थोड़े माला जाप करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी 16 माला करते हैं कभी 8 माला करते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो मतलब भक्ति कर रहे हैं लेकिन उतनी दृढ़ता से नहीं हो पा रही है भक्ति। क्यों? क्योंकि अभी तक वो पूंजी बढ़ी नहीं है। लेकिन जिसकी पूंजी बढ़ी है और जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है बड़े दृढ़ता से, हम जान सकते हैं कि उसने पूर्व जन्मों में भी बहुत भक्ति की हुई है। इस तरह से भक्ति ये एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों की बात है। समझ लीजिए कि आपके पास अभी 10 लाख रुपया है, अगर है तो थोड़ा मंदिर को दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही उदाहरण के दृष्टि से बोल रहे हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो समझ लीजिए आपने बहुत सेवा कर ली, मतलब अपना व्यवसाय कर लिया, सब कुछ कर लिया और बहुत बढ़ गया पैसा आपके पास, 1 करोड़ रुपए हो गए। और फिर जब जीवन का अंत आ जाएगा तो क्या कोई गारंटी है कि आपको अगला जन्म एक ऐसे परिवार में मिलेगा जहां पर 1 करोड़ रुपए हैं? या क्या कोई गारंटी है कि अगले जन्म में आप जब व्यवसाय करना शुरू करेंगे तो आपको वही 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? कोई गारंटी है? नहीं। इस जन्म में भले हमारे पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, अगले जन्म में क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें 1 करोड़ तो क्या 10 करोड़ रुपए मिल जाए, हमें टाटा बिरला के परिवार में जन्म मिल जाए, हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि ऐसे कुटुंब में जन्म मिले जहां 10 रुपए भी ना हो, वो भी हो सकता है। इसका मतलब है कि भौतिक जीवन में जो भी हम एकत्र करते हैं वो नश्वर है, वो इस शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। आपका यश, आपका इज्जत या समाज में, आपका धन, आपका गाड़ी बंगला, आपका कुटुंब, आपका सौंदर्य, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें इस शरीर से संबंधित हैं और ये शरीर क्षणभंगुर है, नश्वर है। तो शरीर नष्ट हो जाएगा तो ये सारे चीजें हमसे छीन लिए जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। अगर आध्यात्मिक जीवन के बैंक अकाउंट में आप पैसे डालते रहे तो इसको आप अगले जन्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। है कोई बैंक बेलगाम में ऐसा कि आप मैनेजर को जाके बोले, मैनेजर साहब हम आपके बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं और हर महीने हम जमा करेंगे 200 रुपए 200 रुपए, मरते दम तक करेंगे, लेकिन आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए कि जब मेरा अगला जन्म हो, जहां भी वो हो, तो ये बैंक अकाउंट मेरे साथ में रहे, फिर से मैं 200 200 जमा करते रहूं। कोई मैनेजर मानेगा आपकी बात? आपको भगा देगा या हाँ भी बोलेगा? अगर आपको धोखा करना, उसको आपका पैसा चाहिए, बोलेगा हाँ हाँ अगले जन्म में सब व्यवस्था कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो भौतिक जीवन का बैंक अकाउंट ऐसे होता है, लेकिन भक्ति का बैंक अकाउंट जो है वो ऐसा नहीं है। ये बैंक का खाता जो भी आपके पास है वो पासबुक है, आपको अगले जन्म में मिल जाएगा। अगले जन्म में आप उसी जगह से, उसी स्थान से शुरू कर सकते हैं भक्ति, जहां की आप पिछले जन्म में भक्ति को छोड़ चुके थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप 10% प्रगति कर चुके हैं इस जन्म में, तो अगले जन्म में आप 10% से ही शुरू कर देंगे। आपने 80% की है प्रगति, आप अगले जन्म में 80% से शुरू करेंगे। हो सकता है कि जब आपका जन्म हो, आपको पता नहीं हो कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कौन थे, कहां थे, आप भक्ति कर रहे थे कि नहीं। अभी अब तक जो प्रवचन हुआ और हमने कहा कि आप भी पिछले जन्म में भक्ति कर रहे होंगे, शायद आप में से कई भक्तों के मन में प्रश्न जाग उत्पन्न हुआ होगा कि मैं पिछले जन्म में क्या था, मैंने किस तरह से भक्ति की होगी। हमने सुना कि हम योगी थे, कैसे योगी, हिमालय में थे क्या, जटा डाल के थे क्या, या हम क्या थे पिछले जन्म में। कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा है कि हम नहीं जानते हैं। पिछले जन्म की बात जानकर क्या फायदा है, आगे जो होने वाला है उसको जानकर क्या फायदा है, केवल मन विचलित होता है। अगर हम बड़े राजा थे तो मन में बड़ा पश्चाताप होता है, अरे रे रे कब पिछले जन्म इतने राजा थे, अभी देखो इतने छोटे घर में रहते हैं। तो फिर क्यों हमें पिछले जन्म के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। लेकिन हाँ, इस जन्म में हम भक्ति में आए हैं ना, और इस जन्म में हमें भक्ति के प्रति आकर्षण हुआ है ना, आए हैं, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में हमने भक्ति की होगी। तो जब तक कि हम भक्ति में नहीं आते हैं इस जन्म में, हम पहचान नहीं सकते कि हम पिछले जन्म में कोई भक्ति कर रहे थे। शायद हमारे हृदय में वो भक्ति के प्रति आकर्षण जो है वो प्रकट रूप से बाहर नहीं आया हो। ऐसे कई बार देखा जाता है, शायद आप अपने अपने जीवन से भी देख सकते हैं कि शायद आपने जीवन के कई साल इस तरह से बिताए हों जिनमें आपने कोई भक्ति नहीं की, या जानते हुए भक्ति मार्ग में आपने प्रगति नहीं की, लेकिन अचानक भक्तों का संग हुआ, फिर आपको जानकारी हुई, ज्ञान मिला, फिर आप भक्ति करने लगे। इसका मतलब ये है कि भक्ति के बैंक के अकाउंट में आपने पिछले जन्म में पैसे डालते रहे थे, आप भक्ति का धन आप जमा करते रहे थे, लेकिन इस जन्म में वो पासबुक आप खो गए, चेकबुक वो आपके नाम में है, वो अकाउंट भी है, लेकिन चेकबुक पासबुक आपने खो दिया, आपको पता नहीं कि आपके पास ऐसे अकाउंट है, आपके नाम में है, आप चाहे तो जाकर ले सकते हैं, लेकिन आप भूल चुके हैं। और जब कोई भक्त आते हैं आपको याद दिलाते हैं कि देखो प्रभु जी माता जी आप आत्मा हैं, आप श्री कृष्ण के दास हैं, तभी वो जागृति पुनः आ जाती है, धीरे धीरे से स्मृति आ जाती है कि अरे हाँ मुझे भक्ति करना चाहिए, कितना अच्छा मार्ग है। और फिर धीरे धीरे से भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, जो पासबुक चेकबुक फिर से हाथ में आ जाता है, फिर से हम जमा करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से कई जन्मों से ये चलती जा रही है। तो भक्ति हमेशा हमारे साथ में रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति आत्मा से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। भक्ति क्या चीज है? भक्ति आत्मा और भगवान श्री कृष्ण का संबंध है, और दोनों आत्मा और परमात्मा श्री कृष्ण शाश्वत हैं, इसलिए उनका संबंध वो भी शाश्वत है, और इस संबंध को कहते हैं भक्ति। तो क्योंकि भक्ति शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, इसलिए एक जन्म से दूसरे जन्म में भी हम भक्ति जारी रख सकते हैं। इसलिए भक्ति में निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति निराश हो जाए तो उनके लिए अर्जुन ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है भगवद गीता में। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, उनके शुद्ध भक्त हैं। जहां भी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, अलग अलग ब्रह्मांडों में, वहां अलग अलग भूमिकाओं में अर्जुन भी खुद प्रकट होते हैं भगवान के संग। यहां पे उनका नाम हुआ अर्जुन। हो सकता है यही जीवात्मा जिनका नाम अर्जुन है किसी दूसरे ब्रह्मांड में किसी और रूप में कृष्ण के साथ आया हो, लेकिन जो भी है अर्जुन अज्ञान में वास्तव में नहीं है, यह केवल एक लीला है हमारे मार्गदर्शन के लिए। तो अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण को गीता के छठे अध्याय में। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, क्षमा कीजिए, कि समझ लो ना कि मैंने ये आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना शुरू किया, भक्ति योग के मार्ग को मैंने स्वीकार किया, और इस मार्ग को स्वीकार करने के लिए इंद्र तृप्ति का मार्ग, विषय भोग का मार्ग मैंने त्याग दिया। अब आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद अगर मैंने सफलता या यश परिपूर्णता प्राप्त नहीं की तो क्या होगा मेरा? ना इधर का रहा ना उधर का। इस मार्ग में आना है इसलिए मैंने भोग छोड़ दिया, संसारी जीवन छोड़ दिया, और यहां पे आने के बाद यहां भी सफलता नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। जैसे एक बादल होता है, जब पवन आता है तो बादल को बिल्कुल छिन्न छिन्न कर देता है, बादल रहता नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उस बादल के। तो अर्जुन का प्रश्न ये है कि अगर मान लो कि आपके आदेश के अनुसार मैं पूरी तरह से भक्ति योग नहीं कर पाया और इसी तरह से मेरा जीवन का अंत हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी कैसी गति होगी? फिर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े शांति से, बड़े सुंदर ढंग से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, कल्याणकृत जो भी व्यक्ति शुभ कर्म करता है इस जगत में उसे दुर्गतिम तात गच्छति, न उसको कभी भी दुर्गति नहीं प्राप्त हो सकती है, उसकी सद्गति ही होनी है। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन परिपूर्णता न प्राप्त करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है किसी न किसी वजह से, फिर भी कोई डर नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है ऐसे व्यक्ति की दुर्गति कभी भी नहीं हो सकती है। नारद मुनि श्रीमद् भागवत में वेद व्यास को इसी तरह का उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन अपक्वो तपते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूदमुष्य किम् को वार्थ आप्तुम् अभजताम् स्वधर्मतः। नारद मुनि कहते हैं कि हे व्यासदेव, हे मुनिवर, अगर किसी व्यक्ति ने अपने सारे स्वधर्म को, भौतिक कर्तव्यों को त्याग दिया, किसके लिए? त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब त्याग करना, स्वधर्मम अपने भौतिक कार्यों को, चरणाम बुजम हरेर भजन, हरि श्री हरि श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए, कृष्ण का भजन करने के लिए, और ऐसे त्याग करके भक्ति स्वीकार करने के बाद अपक्वो, अगर वो कच्चे अवस्था में है, पते ततो यदि, और कच्चे अवस्था की वजह से अगर बाय चांस उसका पतन हो गया तो फिर भी क्या नुकसान है, है व्यासदेव, क्योंकि उसने जो प्राप्त किया है भक्ति करके, भले कम समय के लिए किया होगा, लेकिन जो उसने प्राप्त किया है वो इतना अच्छा है, इतना शुभ है, और वो कभी भी नश्वर नहीं है, इसलिए उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने को वाप्त आर्थम अभजताम स्वधर्मतः, अगर कोई व्यक्ति अपने संसार के कर्तव्यों का पालन बड़े अच्छे ढंग से कर रहा है परंतु कृष्ण का भक्त नहीं है, तो नारद मुनि कहते हैं फिर उसने क्या पाया है, उसको क्या लाभ हुआ? अच्छी तरह से कुटुंब का देखभाल किया, भरण पोषण किया, समाज में सेवा की, देश की सेवा की, गरीबों की सेवा की, अंधों की सेवा की, लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा नहीं की, तो उसने क्या पाया? और अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी भगवान की भक्ति की होगी लेकिन असफल रह गया, मृत्यु बीच में आ गई, फिर भी उस व्यक्ति का क्या नुकसान? ये बहुत सुंदर बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी अगर हम भक्ति करते हैं इस जीवन में तो उसी जगह से हम अगले जीवन में आरंभ कर सकते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण आगे चल के बताते हैं, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। वो कहते हैं हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले वो ऊपर के लोकों में जाता है, ऊर्ध्व लोक, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान, मतलब जो लोग पुण्य करते हैं, पुण्य करने के बाद जो उनकी गति होती है उस गति को ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। उषिता शाश्वती समाह, और बड़े लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, हजारों हजारों सालों तक वो ऐसे ऊपर के लोकों में रहता है, इसी ब्रह्मांड के भीतर स्वर्ग लोक में, और वहां बहुत भोग करता है। वहां का जो भोग है भौतिक है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के दृष्टि से देखा जाए, पृथ्वी के तुलना से देखा जाए तो वहां का भोग बहुत सूक्ष्म है, हालांकि भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है। और इस तरह से वहां का स्वर्गीय भोग का आस्वादन करने के बाद फिर से उसे यहां पृथ्वी लोक में जन्म मिलता है। कौन से कुटुंब में जन्म मिलता है? शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। योग भ्रष्ट मतलब जो इस भक्ति योग में बढ़ते बढ़ते पथ भ्रष्ट हो गया, पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म कहां होता है? शुचिनाम, एक बहुत पुण्यवान कुटुंब में जन्म मिलता है उसको, या तो फिर श्रीमताम एक बहुत धनी परिवार में उसको जन्म मिलता है। वैसे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में भक्ति कर रहा है और उसने थोड़ी प्रगति की हो तो उसे एक प्रकार की गति मिलेगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है उसने बहुत ज्यादा प्रगति की हो लेकिन फिर भी पूरी तरह से सफलता नहीं प्राप्त किया हो, उसकी अलग गति होगी। तो जिस व्यक्ति ने थोड़ी बहुत भक्ति की है इस जन्म में, उसकी गति के बारे में इस श्लोक में भगवान ने बताया है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, कि सबसे पहले वो स्वर्ग लोक में जाएगा, कई साल वहां स्वर्गीय भोग का लाभ उठाएगा और फिर यहां पर या तो एक पुण्यवान कुटुंब में या एक अमीर कुटुंब में वो जन्म लेगा और उसको अवसर मिलेगा कि वो भक्ति में आगे फिर से बढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी व्यक्ति अमीर परिवार में पैदा हुआ हो वो पिछले जन्म में भक्त था, ऐसा नहीं है। अमीर परिवार में जन्म लेने के लिए भौतिक पुण्य भी किया हो ऐसा भी व्यक्ति एक अमीर परिवार में जन्म ले सकता है, लेकिन जिसने थोड़ी बहुत भक्ति करके मृत्यु का सामना जिसने किया है उसकी गति इस तरह से होगी। और ऐसा व्यक्ति क्योंकि पिछले जन्म में बहुत आगे बढ़ा हुआ नहीं था, शायद उसको थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है भक्ति में आने के लिए, आएगा लेकिन हिचकिचाते हुए आएगा, लेकिन अंत में आ जाएगा। लेकिन उन भक्तों की बात क्या है जिन्होंने पिछले जन्म में काफी कुछ भक्ति की लेकिन आगे बढ़ के फिर पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, उनकी गति क्या होगी? तो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यत ईदृशम। वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, किसी ऊंचे भक्त के घर में जन्म मिलता है, उसे स्वर्गलोक नहीं जाना पड़ता। स्वर्गलोक में जाएगा कितने हजारों साल बर्बाद हो जाएंगे, हाँ जो जाता है वहां उसे स्वर्गीय भोग मिलता है, लेकिन स्वर्गीय भोग का संबंध भक्ति से नहीं है। जो सच्चा भक्त होता है उसके मन में स्वर्गीय भोग के प्रति कोई रुचि नहीं होती, लेकिन जो आगे बढ़ा हुआ भक्त होता है वो स्वर्ग लोक में उसे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधे पृथ्वी लोक में ही वो जन्म लेता है। और ऐसे कुटुंब में जहां की पहले से भक्त हो ताकि वो अच्छी तरह से प्रगति कर सके। श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि मेरा सौभाग्य था कि मेरे पिता एक बहुत ही शुद्ध वैष्णव थे, बचपन से ही वो मुझे कृष्ण भक्त बनाना चाहते थे, और बचपन से ही मैं देखता था कि कैसे हमारे घर में हमेशा साधु आया करते थे और अलग अलग तरह के साधु आते थे और मेरे पिताजी उनकी बड़ी श्रद्धा भाव से सेवा किया करते थे, और फिर वो उन साधुओं से कहते कि कृपया आप मेरे बच्चे अभय चरण को आशीर्वाद दीजिए कि उनको श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में आसक्ति निर्माण हो जाए कि वो अच्छा कृष्ण भक्त बन जाए। तो इस तरह का आशीर्वाद चाहते थे श्रील प्रभुपाद के पिता उनके बच्चे के लिए। अभी साधारण पिता ये जगत में क्या चाहते हैं बच्चे के लिए, कि बहुत पैसा कमाए, वो अच्छी कोई नौकरी मिलाए, कहीं ऊंचे पद में आ जाए, उसका भी कोई यश मिले समाज में, उसका नाम हो जाए, अखबार में फोटो छप जाए, वो अमेरिका इंग्लैंड घूमे, है ना, ऐसा चाहते हैं। अच्छी तरह से शादी करे, उसके भी बच्चे हो और इस तरह संसार चलाता रहे। साधारण पिता ऐसे सोचता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद के जो पिताजी थे वो ऐसे साधारण पिता नहीं थे। वो हमेशा सोचते थे कैसे मेरे लड़के अभय चरण को शुद्ध कृष्ण भक्त बनाए, और उन्होंने अभय चरण को बचपन से ही भगवान के अर्च्य विग्रह की पूजा कैसे करनी है वो सिखलाया, मृदंग करताल कैसे बजाना है, कीर्तन कैसे करना है ये सिखलाया। और अभय चरण बचपन से ही अपने मोहल्ले में जो भी बच्चे थे उनके साथ में छोटी सी रथ यात्रा निकालते थे। वैसे हम 11 और 12 जनवरी को यहां बेलगाम में मंदिर की ओर से रथ यात्रा निकालने वाले हैं, वो तो बड़ी यात्रा होगी, लेकिन अभय चरण अपने बचपन में जो यात्रा निकालते थे वो छोटी सी थी, उनका रथ इतना छोटा था, 1 फुट बड़ा, और मोहल्ले के सारे बच्चे आते थे और उस रथ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को रखते थे, उनकी सेवा करते थे, घर घर ले जाते थे रथ को, और बच्चे आगे पीछे कीर्तन करते, और घर घर से कोई ना कोई लोग आके कोई भोग लाता, कोई नैवेद्य के लिए कोई वस्तु लाता, कोई आरती उतारने आता, और सारे मोहल्ले को बालक अभय कृष्ण अभय चरण ने कृष्ण भक्ति में लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पिता ऐसे थे, बचपन से उनको ऐसे संस्कार मिले। प्रभुपाद जी की माता जी चाहती थी कि उनका लड़का अभय चरण लंदन चले जाए और बड़ा वहां बैरिस्टर बने, लंदन में एडवोकेट वकील बने और बहुत पैसे कमाए, लेकिन अभय चरण के पिताजी वो इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनको डर था मेरा नौजवान लड़का अगर लंदन जाएगा तो वहां के रहन सहन का ढंग स्वीकार कर लेगा, शराब पीना, मांस खाना ये सब चालू कर देगा, और फिर ये कृष्ण भक्ति का पथ भूल जाएगा, और वहां जाएगा बहुत पैसे कमाएगा फिर अलग मार्ग में चले जाएगा। इसलिए उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो लंदन जाए। तो इस तरह से प्रभुपाद ने कहा कि मेरा भी सौभाग्य था कि मेरा जन्म ऐसे कुटुंब में हुआ जबकि मुझे ऐसे पिता मिले। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को ऐसे पिता मिलते हैं जो कि शुद्ध भक्त हैं, गौर मोहन डे जैसे, हम जान सकते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में बहुत बहुत आगे तक भक्ति की होगी। प्रभुपाद जी उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में भी बताया करते थे। उनका जन्म भी ऐसे ही कुटुंब में हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी का नाम था केदारनाथ दत्त, जिनको हम भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से जानते हैं। वो वैसे तो जिला अधिकारी थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इतना ऊंचा पद था उनका, लेकिन शुद्ध वैष्णव थे, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, और उनके 13 बच्चे थे। उस जमाने में बहुत कुटुंब बड़े हुआ करते थे ना, तो 13 बच्चे सबको कृष्ण भक्त बनाए उन्होंने, एक एक को, और उनमें से एक जो लड़का था वो था बिमला प्रसाद, जो आगे चल के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए। तो उनका जन्म भी ऐसे शुद्ध भक्त माता और पिता के घर में हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा अपने बच्चों को मार्गदर्शन देते, उनको अच्छे संस्कार देते भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती या केदारनाथ बिमला प्रसाद दत्ता तरुण हो गए तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि अभी तुम्हें दीक्षा लेने का समय आ गया है। तो उन्होंने कहा कि यहां पास में एक बहुत वरिष्ठ और शुद्ध वैष्णव रहते हैं बाबा जी, जिनका नाम है गौर किशोर दास बाबा जी, तो उनके पास जाकर तुम दीक्षा ले लो। तो बिमला प्रसाद वहां चले गए, लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी होने के नाते पूरी तरह से संसार से विरक्त थे, उनको कोई रुचि नहीं थी संसार में, संसार के भोग से, संसार के ऐश्वर्य से कोई रुचि नहीं थी। अब ये देखा जाता है संसार में कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये 3 चीजें लोग बहुत चाहते हैं, कि लोग हमारी पूजा करें, हमारा सम्मान करें, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा नाम अखबार में छपे, जहां भी जाए लोग हमें पहचाने, अरे ये देखो देखो ये आ रहे हैं, और लाभ हमें बहुत धन मिले। तो ये लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सभी लोग चाहते हैं। और ये जो प्रतिष्ठा, ये मान सम्मान की जो भावना है, बहुत सूक्ष्म होती है। जब व्यक्ति चाहता है कि मेरे अनुयायी होने चाहिए लोग, मेरे पीछे पीछे बहुत सारे लोग होने चाहिए, मैं जो कहता हूं वो मानने वाले लोग बहुत सारे होने चाहिए, ये एक बहुत सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। कई लोग स्थूल रूप से इंद्रिय भोग को त्याग सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप का जो इंद्रिय भोग है, ये है कि हमारे बहुत पूजा हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हमारा हो। तो गौर किशोर दास बाबा जी ऐसे मान सम्मान की भावना से भी परे थे, उनको कोई अनुयायी नहीं चाहिए था। तो जब बिमला प्रसाद वहां गए उनके पास और कहा कि कृपया मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, तो गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा कि मैंने तो व्रत लिया है कि मैं तो किसी को भी शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तो गुरु बनने के योग्य नहीं हूं और मैं कोई शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती या विमला प्रसाद बड़े निराश हुए, वापस घर में लौट के आए। और जब केदारनाथ दत्त अर्थात भक्ति विनोद ठाकुर ने सुना कि ये बिना दीक्षा लिए हुए घर में आए हैं, तो उन्होंने अपने लड़के से क्या कहा, जब तक दीक्षा नहीं लेकर आओगे तब तक घर में लौट के नहीं आना। ऐसे कितने पिताजी हैं, ऐसे कई पिता हैं जो बोलते हैं दीक्षा लोगे तो घर में लौट के नहीं आना, है ना? कई बार ऐसे होता है, क्यों भक्ति मार्ग में जाते हो, अच्छा पैसे कमाओ, अच्छा एक इंद्रिय विषय भोग बनो, भोगी बनो जैसे दूसरे लोग हैं, देखो उस घर में कितना भोग कर रहे हैं, देखो उस घर में ये लड़का कितना कमा रहा है, कितना भोग करता है, वो घर में देखो वो लड़का कितना दारू पीता है, ये घर में देखो उसने कितना किया है। इसका मतलब है कि केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद ठाकुर जैसे पिता भी साधारण पिता नहीं थे। वो जानते थे कि जीवन का उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जाकर बहुत सेवा की, छुप छुप के गौर किशोरदास बाबा जी की। जब भी वो जाते थे नदी के पास तो बिमला प्रसाद जाकर उनकी कुटिया साफ करते, सब कुछ ठीक ठाक रखते, पानी पीने का पानी भर के रख देते, कपड़े जो है वो अच्छी तरह से रख देते। और गौर किशोरदास बाबा जी आके देखते कि कौन है जो मेरे अनुपस्थिति में मेरा घर ठीक ठाक, मेरा कुटिया ठीक ठाक कर रहा है, सब स्वच्छ कर रहा है, पानी भर के रख रहा है। तो फिर आखिर में उनको पता चला और फिर वो प्रसन्न हुए बिमला प्रसाद के ऊपर और उन्होंने उनको दीक्षा दे दी और वो उनके एकमात्र शिष्य हुए। उसके बाद उन्होंने किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति को ऐसे कुटुंब में जन्म मिलता है जहां के माता पिता इतने शुद्ध भक्त हैं, तो अवश्य हम समझ सकते हैं कि पूर्व जन्मों में ऐसे लोगों का बहुत घनिष्ठ संबंध हुआ होगा भक्ति से, बहुत शुद्ध भक्त हुए होंगे। वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो तो नित्य सिद्ध जीव हैं, वो तो भगवान के धाम से सीधे आए हैं। लेकिन एक उदाहरण के तौर से हम जान सकते हैं कि अगर किसी ने बहुत ज्यादा प्रगति की होगी पिछले जन्म में, तो उसे ऐसे ही एक वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है। अभी यहां पर भी हमारे मंदिर के भक्त समाज में कितने सारे गृहस्थ भक्त हैं, जिनका कुटुंब है, जिनके बच्चे हैं, और उनके कुटुंब में भी ये छोटे बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। इसका मतलब है कि इन बच्चों ने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा भक्ति की होगी, इसलिए उनको ऐसे कुटुंब में जन्म मिला जहां माता पिता और सभी लोग कृष्ण भक्त हैं। तो इन बच्चों का कितना सौभाग्य है और बच्चों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है कि ये जो अवसर हमें मिला है उसका पूरा पूरा सदुपयोग हमें करना चाहिए। आप सब सुन रहे हैं ना? तो तो जिनको भक्तों के परिवार में जन्म मिला है वो तो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन फिर भी ऐसे देखा जाता है कि जब हम किसी चीज को बचपन से देखते आते हैं तो कभी कभी उसको सस्ता लेते हैं। यही इसीलिए भी देखा जाता है कि कई बार भक्त के घर में पैदा होने के बाद भी कोई व्यक्ति भक्ति नहीं लेता है। कई बार भक्त आते हैं ये परेशान होकर कि क्या करेंगे, क्या उपाय है, हम इतने सालों से 15 साल से 20 साल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारा पूर्व जन्म की मनोवृत्ति को साथ में लेकर आया है। तो शायद भगवान उन माता पिता की परीक्षा भी कर रहे हैं। तो खैर, लेकिन साधारणतः यह देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा प्रगति की हो उसे एक वैष्णव कुटुंब में जन्म मिलता है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु ने इस नियम में थोड़ा कुछ फेर बदल कर दिया है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, इस कलयुग में भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए आए हैं, हम सबको सिखलाने के लिए आए हैं कि कृष्ण भक्ति हमें कैसे करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु केवल भारत देश को कृष्ण भक्ति देने के लिए नहीं आए हैं, वो किसको भक्ति देने के लिए आए हैं? किसको? सारे जगत को देने के लिए आए हैं। इसलिए सारे जगत को कैसे भक्ति दें, तो उन्होंने, क्योंकि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने ऐसी योजना की कि कई जीवों को जो कि पिछले जन्म में भक्ति में काफी आगे बढ़े हुए थे या थोड़े कम भी हो सकते हैं, लेकिन उनको ऐसे ऐसे परिवारों में पश्चिम देशों में, पूरब के देशों में उनको जन्म दिया जहां माता पिता बिल्कुल पापी हों, बिल्कुल भक्ति के विरुद्ध हों, या विरुद्ध नहीं भी हों तो उनको कोई जानकारी नहीं हो भक्ति के बारे में। ऐसे कुटुंबों में उनको जन्म मिला लेकिन वो किसी न किसी तरह से भक्ति मार्ग में आ गए। तो ये चैतन्य महाप्रभु की खास योजना है, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसे जो जीव जो कि पिछले जन्म में भक्ति कर रहे थे उनको सारे पृथ्वी भर में फैलाएं। किसी को ऑस्ट्रेलिया में जन्म कराया महाप्रभु ने, किसी को जापान में, किसी को अमेरिका में, किसी को यूरोप में, किसी को अफ्रीका में, किसी को भारत में, किसी को अरब देशों में, किसी को चीन रशिया में। तो चैतन्य महाप्रभु की योजना से ये सारे भक्त अब अलग अलग देशों में जन्म ले चुके हैं। क्यों? महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने के लिए। इस तरह से कृष्ण भक्ति ज्यादा से ज्यादा अब बढ़ेगा। तो खैर, लेकिन इन दो श्लोकों में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संक्षेप में बताया हुआ है कि जो पथभ्रष्ट भक्त होता है तो उसकी दो तरह की गति हो सकती है। एक, अगर उसने कम प्रगति की हो तो अगले जन्म में वो स्वर्ग लोक को जाएगा, वहां कई साल रहकर भोग करके एक पुण्यवान परिवार या एक अमीर परिवार में जन्म लेगा और अपने भक्ति को आगे बढ़ाएगा। और अगर उसने भक्ति में बहुत ज्यादा प्रगति की हो तो सीधे उसे अगले जन्म में एक वैष्णव के कुटुंब में जन्म मिलता है। और फिर जन्म मिलने के बाद ऐसा पथभ्रष्ट योगी, मतलब जो व्यक्ति पिछले जन्म में भक्त था, वो क्या करता है, वो कैसे सोचता है, तो भगवान श्री कृष्ण गीता के इसी अध्याय में आगे बताते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यत ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। वो कहते हैं कि हे कुरु नंदन अर्जुन, जो व्यक्ति इस तरह से पिछले जन्म में भक्ति अपूर्ण करके जिसने मृत्यु की सामना की, ऐसे व्यक्ति आगे जन्म में आकर उसके पौर्व देहिकम, पूर्व जो देह था उसकी जो चेतना है उसको आगे बढ़ाएगा। बुद्धि संयोगम, जो भी चेतना भक्ति की चेतना थी पिछले जन्म में उसको इस जन्म में आगे बढ़ाएगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम, पूर्व देह की जो चेतना है इस जन्म में आगे बढ़ाएगा। यत ते च ततो भूयः संसिद्धिं कुरु नंदना, और फिर वो प्रयत्न करेगा इस भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए। इस तरह से जहां भी ऐसे पिछले जन्म में पथभ्रष्ट हुए योगी को इस जन्म में ऐसे मौका मिलेगा कि वो पूर्व जन्म की चेतना को आगे बढ़ाएगा और भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहेगा। कितनी सुंदर बात है, क्योंकि ये भगवान हमारे लिए गारंटी दे रहे हैं कि हम अगर इस जीवन में भी सफल नहीं हुए तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अगले जन्म में अवश्य हमें चांस मिलेगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है जो कि ये नहीं सोचेगा कि हम अगले जन्म तक रोकेंगे, अभी टाइम है ना। जैसे एक विद्यार्थी है, वो ये नहीं सोचेगा कि चलो अभी SSLC पास करने के लिए मैं 5 साल में भी कर सकता हूं, अगर इस साल में फेल हो गया तो अगले साल दे सकता हूं, अगले साल भी फेल हो गया और ऐसे करते रह सकता हूं 5 साल 10 साल। हाँ, कर तो सकता है, 10 साल तक वो परीक्षा देते जा सकता है, लेकिन समय क्यों बर्बाद करना है। तो बुद्धिमान विद्यार्थी सोचेगा पहले ही बार SSLC परीक्षा में बैठ के पास हो जाना अच्छा है, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए कृष्ण भक्त सोचता है अभी अगले जन्म के लिए इंतजार क्यों करना है, किसे मालूम अगला जन्म कहां होगा, कैसे होगा, किस परिस्थिति में होगा और वहां भक्ति करने के लिए क्या वातावरण होगा। इसलिए इसी जन्म में भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है जो बुद्धिमान भक्त होता है। और इस तरह से भक्त सफलता के प्रयत्न में हमेशा आतुर रहता है। इसके बारे में श्रीमद् भागवत में कथा आती है महाराज भरत की, जिनके बाद में ये देश का नाम आया है भारत। भरत के बाद ये नाम हुआ भारत। पहले तो वो बड़े राजा थे, सारे पृथ्वी के राजा थे, और बहुत ही युव अवस्था में उन्होंने अपना कुटुंब, अपना राज्य, अपना धन, अपनी प्रजा, अपना महल सब कुछ त्याग दिया और जंगल में चले गए भगवान की प्राप्ति के लिए। और जंगल में भक्ति तपस्या करते करते काफी ऊंचे स्तर तक पहुंचे। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि उन्होंने भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त किया, जो कि एक बहुत ऊंचा स्तर होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी आसक्ति एक हिरण से हो गई, हिरण के बच्चे से, और इस हिरणी के बच्चे से आसक्त होकर वो पथ भ्रष्ट हो गए। और इसलिए अगले जन्म में उनको एक हिरण का शरीर मिला, लेकिन क्योंकि वो इतने आगे बढ़ चुके थे पूर्व जन्म में भक्ति में, भगवान की कृपा से उनको स्मृति थी पूर्व जन्म के बारे में, तो हिरण के शरीर में होते हुए उन्होंने ठान लिया कि जो गलती हमने पिछले बार की थी वो इस बार नहीं करेंगे। पिछले जन्म में हम पथ भ्रष्ट हो गए थे, इस जन्म में हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम माया के चंगुल में फंस नहीं जाएं, बहुत सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम फिसले नहीं, भगवान कृष्ण के अलावा किसी अन्य चीज से आसक्त न हो। तो हिरण के शरीर में भी वो बहुत तपस्या करने लगा और केवल साधुओं के आश्रम के पास में ही रहने लगा, और उसके बाद में उसे एक ब्राह्मण के वैष्णव के जन्म घर में जन्म मिला। और उनके पिता जो थे वो तो बड़े शुद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत कोशिश की भरत को, अभी उनका नाम हो गया था जड़ भरत, उनको बहुत कुछ समझाने के लिए प्रयास किया, उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, लेकिन ये लड़का तो बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं था। वास्तव में यह लड़का बहुत बुद्धिमान था, लेकिन जानबूझ के नाटक कर रहा था एक पागल व्यक्ति बनने का, क्योंकि उसने सोचा कि मैं अगर बुद्धिमान व्यक्ति की तरह रहा यहां पर तो मैं संसार में अटक जाऊंगा और फिर धोखा है, खतरा है, हो सकता है मैं फिर से माया में पड़ जाऊंगा जैसे राजा के शरीर में मैं माया में पड़ गया था। तो इस बार मैं ये खतरा नहीं लूंगा, मैं ऐसे नाटक करूंगा कि मैं एक पागल व्यक्ति हूं, एक मूर्ख व्यक्ति हूं। और इसी तरह से उन्होंने व्यवहार किया और सभी लोगों ने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत मूर्ख है, इसलिए उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ मतलब इसकी कोई चेतना बुद्धि नहीं है, जड़ भरत नाम रख दिया। लेकिन वास्तव में जड़ नहीं थे, बड़े बुद्धिमान थे, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। और अंत में उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया और भगवान के धाम में लौटकर चले गए। तो इस छोटी सी कथा से हम समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म की चेतना को कैसे आगे 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 बढ़ाया जा सकता है। हिरण के शरीर में भी उन्होंने अपनी भक्ति की भावना को बढ़ाया, हिरण के शरीर में होते हुए साधुओं का संग किया, और फिर अगले जन्म में जब एक ब्राह्मण का शरीर मिला मनुष्य समाज में, तब तो आगे 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 भक्ति बढ़ाते रहे और फिर शुद्ध भक्त होकर भगवान के धाम में लौटकर चले गए। और आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव रियते ह्यवशोऽपि सः। वो कहते हैं कि जब उसे अगला जन्म मिलता है और वो प्रयत्न करता है भक्ति में सफलता के लिए, तो पूर्व जन्म जो उसने अभ्यास किया हुआ है उसकी वजह से वो भक्ति मार्ग के प्रति ऐसे आकर्षित हो जाता है कि उसे भी पता नहीं चलता कि ये आकर्षण क्यों हो रहा है। रियते, रियते मतलब आकर्षित होता है। कैसे आकर्षित होता है? अवशोपि सह, निस्सहाय होकर वो आकर्षित होता है भक्ति मार्ग में। जैसे कोई शराबी होता है, उसको एक स्वाभाविक तौर का आकर्षण रहता है शराब के अड्डे के पास, स्वाभाविक रूप से उसके पैर वहां चले जाते हैं। उसी तरह से जो भक्त होते हैं उनको भी एक स्वाभाविक आकर्षण रहता है। हम देखते हैं कि कई बार किसी भी घर में एक छोटा सा बच्चा कभी कभी इतना आकर्षण दिखाता है भक्ति के लिए कि आश्चर्य की बात हो जाती है। बचपन से ही वो बहुत ही जल्दी श्लोक सीख लेता है, भजन सीख लेता है, और जब भक्त आते हैं तो उनके साथ में बैठ के सुनना चाहता है। जैसे नारद मुनि ने वेद व्यास को अपने पिछले जन्म की कथा सुनाई, उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, मैं बहुत गरीब था, मेरा पिता नहीं था और कोई नहीं था, केवल अकेली मेरी माँ थी। और एक दिन हमारे स्थान में कई अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भक्त आए चातुर्मास के समय और हमारे जगह में रहे, और हम दोनों ने उनकी बहुत सेवा की, और खास करके जब भी वो वहां बैठते थे कथा करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, तो मैं उनके साथ में जाकर बैठता था और वहां बैठकर कभी हिलता नहीं था। बहुत आकर्षण था मुझे उनके कथा के लिए, कीर्तन के लिए। मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं था जो शरारत करते हैं, मस्ती करते हैं, भागदौड़ करते हैं, खेल कूद में, क्रीड़ा में रुचि रखते हैं। मैं ऐसे नहीं था, मैं बचपन से ही बहुत धीर था। और जब ये भक्त, महान भक्त मेरे घर में आए तो मुझे इतना अच्छा लगा कि दिन रात मैं उनके संग में रहता और उनकी सेवा करता। और एक बार उनकी अनुमति लेकर मैंने उनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण किया और उन्होंने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया। और फिर एक सांप ने, जब वो चले गए ये भक्त, एक सांप ने मेरी माँ को काटा और उनका देहांत हो गया और मैं सारे दुनिया में अकेला पड़ गया। और जब मैंने देखा कि मैं एक 5 साल का बच्चा हूं, मेरी माँ नहीं, पिता नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं, तो मैंने सोचा कि ये भगवान कृष्ण की असीम कृपा है मेरे ऊपर। और मैंने जान लिया कि ये भगवान श्री कृष्ण की योजना है, कि भगवान चाहते हैं कि मैं उनके शरण में चले जाऊं। इसलिए मैंने घर को छोड़ दिया और मैं भगवान की खोज में जगह जगह घूमता गया और आखिर में मैंने भगवान को प्राप्त किया। तो देखिए नारद मुनि कैसे अपने पिछले जन्म में बचपन से ही आकर्षित हुआ करते थे, उसी तरह से प्रहलाद थे। प्रहलाद भी बचपन से ही भक्ति से कितने आकर्षित थे, हालांकि उनके पिता असुर थे, राक्षस थे, भक्ति के बिल्कुल विहीन थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद का आकर्षण कितना था। क्यों? क्योंकि प्रहलाद पिछले जन्म में बहुत ऊंचे भक्त थे, इसलिए इस जन्म में उनका आकर्षण भक्ति की तरफ स्वाभाविक था। रियते यवशोपि सह, अवश होकर विवश होकर वो भक्ति की ओर आगे बढ़ने लगे। इस तरह से व्यक्ति आगे आगे बढ़ता है और आकर्षित आकर्षण उसका भगवान के प्रति बढ़ता रहता है और फिर वो शुद्ध भक्त बन जाता है और फिर जब उसकी मृत्यु होती है फिर उसे यहां वापस लौट के नहीं आना पड़ता, वो भगवान के धाम में लौट कर चले जाता है। तो ये इतिहास है एक भक्त का। हम सब का ऐसा ही कुछ इतिहास है और ऐसा ही कुछ भविष्य होगा। मतलब हम सब ने पूर्व जन्म में कुछ भक्ति की है, शायद उसके पूर्व जन्म में भी, उसके पहले जन्म में भी, ऐसे कई जन्मों से हम थोड़ा कुछ 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 करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं। और अगर इस जीवन में हमने सफलता प्राप्त कर ली, हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हो गए, तो हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अगर हमने पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं की, अगर 80% 90% 70% किया, तो अगले जन्म में हमें मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए भक्ति मार्ग में। तो हमें चाहिए कि हम अगले जन्म के ऊपर भरोसा नहीं रखें, हम इसी जन्म के ऊपर भरोसा रखें, बल्कि इस जन्म के ऊपर भी भरोसा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि मृत्यु कब आएगी वो कह नहीं सकते। इसलिए हमें इस भक्ति पथ को बड़े गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए, इस तरह से भक्ति करना चाहिए कि मानो इसी जन्म में हमें भगवान के धाम में लौट कर जाना है। चाणक्य पंडित कहते थे कि अगर आपको भौतिक जीवन में सफल होना है तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मृत्यु कभी भी हो सकती है तो आपकी दिन रात परिश्रम करके मेहनत करके पैसे कमाने के लिए क्या प्रेरणा रहेगा? आप सोचेंगे जिसके लिए मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं, मैं कमाऊंगा और इतना सब इकट्ठा करूंगा, और अगर कल मृत्यु हो गई तो इन चीजों का क्या फायदा? तो अगर कोई भोगी व्यक्ति जो भोग ऐश्वर्य के पीछे भाग रहा है वो ऐसे दार्शनिक बनता है तो फिर वो भोग नहीं कर पाएगा। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सोचना चाहिए मृत्यु कभी नहीं आएगी। मतलब ऐसे व्यक्ति को सपने की दुनिया में रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि उसे सोचना चाहिए, बल्कि जानना चाहिए कि मृत्यु अगले क्षण आने वाली है, ऐसे उसको सोचना चाहिए। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हो सकता है अभी एक हफ्ता और हम जिएंगे, एक साल, 10 साल 20 साल, नहीं, उसको सोचना चाहिए अगले क्षण मेरी मृत्यु आ जाएगी। उस गंभीरता से फिर भक्त भक्ति में तैयारी करता है अगले जन्म के लिए। जैसे महाराज खटवांग, उनको बताया गया कि आपको जीने के लिए केवल एक क्षण बच गया है, तो वो एक क्षण उन्होंने कैसे उपयोग किया? हाय हाय करते हुए बर्बाद नहीं किया, डॉक्टर डॉक्टर बुलाओ, नहीं, वो डॉक्टर बुलाते बुलाते एक क्षण खत्म हो गया होगा। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना मन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित कर दिया और इस तरह से अपना जीवन सफल बनाया और भगवान के धाम में लौट कर चले गए। इसलिए हमें चाहिए कि हम बहुत गंभीर हों भक्ति मार्ग में। इसी जीवन में हमारे भक्ति को हमें सफल बनाना है, ये दृढ़ निश्चय करके हम चलें। इसलिए हम जो माला जप करते हैं, हम जो मंदिर में आते हैं सत्संग में भाग लेने के लिए, हम जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से हमें करना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर अवश्य होगी और इस जन्म में भी हम भगवान के धाम में लौटकर जा पाएंगे। अब ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में गीता जयंती के अवसर पर हम सब बड़े पैमाने पर भगवत गीता के ग्रंथों का वितरण करने वाले हैं। अभी करना चाहते हैं ना? बहुत कम लोगों ने कहा। आप सब ये भगवत गीता के वितरण के कार्यक्रम में भाग लीजिए, क्योंकि ये ज्ञान जो भी आज आपने सुना ये भगवत गीता के आधार पे है, और इस ज्ञान को स्वीकार करके हर एक व्यक्ति अपना जीवन सफल बना सकता है। सारे समस्याओं का समाधान इस ग्रंथ में है, तो इस ग्रंथ का वितरण करने से समाज का परम कल्याण हो सकता है। इसलिए सबसे ऊंचा कल्याण का कार्य है इस गीता और भक्ति का वितरण करना। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी बड़े उत्साह से, बड़े निष्ठा से इस भगवत गीता के वितरण के कार्यक्रम में आप भी भाग लें। कम से कम 5, 10, 15, 20 गीता आप बांटें। जैसे पिछले रविवार को हमने कहा था, क्या आपको बताया था पिछले रविवार कितने बांटने चाहिए? कम से कम 30। कैसे? एक दिन में एक गीता, एक दिन में एक गीता आप बांटेंगे तो 30 दिन में कितने हुए? 30 गीता। तो अगर 1000 भक्त ऐसे बांटेंगे तो कितने किताब बांट जाएंगे? 30,000। आसान है ना? एक दिन में एक गीता बांटना क्या मुश्किल है? बहुत बड़ी बात है। कितने भक्तों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, कितने भक्तों को लगता है कि आसान है? आसान है। एक दिन में एक ही गीता, और फिर ऐसे हर रोज आप एक गीता बांटते रहिए। हाँ, चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर हमने प्रयास किया तो हर एक भक्त का इतना हो सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण, श्रील प्रभुपाद, सारी गुरु परंपरा की कृपा हमारे ऊपर अवश्य होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज के विषय के ऊपर कोई प्रश्न है किसी के?
भक्ति जब भक्त के घर में पैदा हुए वो भाग्यवान है, लेकिन जिन ऐसे देखा जाता है कि किसी को सहज भक्ति मिल जाती है तो इतना दृढ़ता से नहीं करते, और किसी के घर में रोका जाता है तो वो बच्चे ज्यादा आगे आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? बड़ों के बारे में भी कभी कभी ऐसा ही होता है।
हाँ, दोनों चीजें ठीक है। कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि जो भक्त भक्तों के घर में जन्म लेते हैं उनके लिए भक्ति सस्ती हो जाती है, और भक्ति नहीं करते, माता पिता को बार बार उनको टोकना पड़ता है, करो करो, फिर थोड़ा बहुत करते हैं फिर नहीं करते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि भक्तों के घर में बच्चा इतने अच्छे ढंग से भक्ति करता है, जैसे खुद श्रील प्रभुपाद के संदर्भ में हमने सुना अभी कि कैसे उनके पिता ने उनको ऐसे अच्छे संस्कार दिए और उन्होंने किस तरह से अच्छी भक्ति की, ऐसे भी कई उदाहरण हैं। और दूसरी ओर ये भी सही है कि एक प्रतिकूल वातावरण में कभी कभी जो बच्चा होता है या तरुण तरुणी होते हैं वो अच्छा प्रगति कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि प्रतिकूल वातावरण में वो भक्ति को त्याग भी देते हैं, कई बार ऐसे हो जाता है। तो दोनों चीजें सही हैं। आखिर में उस जीव ने, उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में कितनी भक्ति की है, कितनी दृढ़ता से स्वीकार किया है, वो सब उसके ऊपर निर्भर है। ठीक है, ये है कि क्या अर्जुन चैतन्य महाप्रभु के साथ में इस लीला में भाग लेने के लिए